मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज सितंबर का पहला दिन है, वर्ष है 2017 और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सक्षम सिंह, आप दालमाऊ रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं, आकाश देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और महेंद्र गुलाबराव वेलखेड़कर वनोजा जिला वाशिम से हैं। तो सक्षम, आकाश और महेंद्र, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी बात स्टूडेंट्स जो लगातार मेल पर मुझसे पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जो क्लास से संबंधित है, क्योंकि अब क्लास लगभग बहुत नजदीक आती ही जा रही है। 22 अक्टूबर से 15 दिन की क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं। पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है और वह यह है कि सर, हम जब इस क्लास में आएंगे तो इन 15 दिनों के क्लास में हमें क्या क्या फायदा मिलेगा और कितना कितना फायदा मिलेगा, ये प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। मित्रों, आपके स्तर पर इस प्रश्न का पूछा जाना बिल्कुल जायज है। देखिए, आप 15 दिन के लिए आएंगे छुट्टी लेकर के, अगर नौकरी में है तो आएंगे, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या और दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो उसे छोड़कर आएंगे, किराया लगाकर आएंगे, क्लास की फीस देंगे, तो डेफिनेटली आपकी ये चिंता होनी ही चाहिए कि भाई मैं जो करने जा रहा हूं उससे आफ्टर ऑल मुझे फायदा क्या होगा, राइट? लेकिन मित्रों, यहां जो मेरा कहना है वो देखिए कि ये फायदा जो होता है खासकर एजुकेशन के फील्ड का, है ना, ज्ञान के क्षेत्र का, आप क्यों कह लीजिए नॉलेज के फील्ड का, यह एक तरफा नहीं होता है, है ना। ये इसमें उस तरह का एक्सचेंज नहीं होता कि मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूं और आप 1,000 रुपए के बदले में मुझे आप 50 किलो गेहूं दे दीजिए, इस तरह की बात यहां होती नहीं है। यहां बात क्या होती है, यहां बात दोनों के ही एक्सचेंज की होती है, क्योंकि जो चीजें दी जाती हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं और जो आप ले रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो न तो जो मैं दे रहा हूं वो दिखाई दे रहा है और उसमें से आप कितना क्या संभाल कर रख रहे हैं मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो न देने वाला जान रहा है न लेने वाला जान रहा है। गेहूं को तो मैं जान रहा हूं, आप मुझे 1,000 रुपए देंगे, मैं अगर आपको 50 किलो गेहूं तौल के देता हूं तो बकायदे मैं देख रहा हूं कि 50 किलो गेहूं मैंने आपको दे दिया है, मुझे दिखाई दे रहा है और आपने रख लिया है बोरी में, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है और आप ले गए ये भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मित्रों कि हमें क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। आप कितना ले पाते हैं, जैसे मैं अब कहूं कि बरसात हो रही है और इतना बरसात हो रही है तो इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, आपका क्या जवाब होगा? अगर आप किसान हैं तो आप उस तरीके से फायदा बताएंगे, कौन सी फसल बोई है आपने आप उस तरीके से फायदा बताएंगे, अदरवाइज आप जितना पानी उसका अपने घर के अंदर ले आएंगे आप उसका फायदा बताएंगे, कुछ लोगों को तो एकदम बाढ़ में नुकसान ही हो रहा है। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि जो चीज हो रही है उससे हम कितना फायदा ले पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है मित्रों, जहां तक देने का सवाल है मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं देने में कोई कसर नहीं होगी। जो बेस्ट हो सकता है और होना चाहिए, यानी कि हो सकता ही है बल्कि होना चाहिए, वो आपको देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। ये कहने की बात नहीं है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जब आप सब यहां आएंगे और आप खुद उन बातों का अनुभव करेंगे, या हमारे, ये तो हमारा 7th बैच है, 6 बैच इससे पहले निकल चुके हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट से आपकी मुलाकात भी हुई हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों उत्तर यह है कि यह लेने देने और फायदे नुकसान का जो मामला है वो बड़ा विचित्र किस्म का मामला है। मैं आपको केवल इंश्योर कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं, लेकिन मुझे आपसे भी उतनी ही अपेक्षा होगी कि आप सच में लेने आ रहे हैं और यहां से लेकर जाने का की एक मानसिकता भी आप रखते हैं। तो मित्रों, इसके बारे में बस इतना ही। अब थोड़ी सी मैं आपको सूचना दे दूं, कुछ सूचनाएं जो मैं हर शुक्रवार को देता हूं। फ्रेंड्स, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगे। साथ ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र के 4 आर्टिकल्स मिलेंगे, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के। इसी के साथ ही दोस्तों आपको एक वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है, साप्ताहिक प्रश्न जो 200 शब्दों में होता है, जो मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर के तैयार किया जाता है, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, जहां तक मुख्य विषय का सवाल है दोस्तों, आज के मुख्य विषय के लिए मैंने चुना है कि जो ओबीसी के लिए अभी सरकार ने जो 2-3 नए प्रावधान किए हैं, है ना, उस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, और ये बातें हम आरक्षण के संदर्भ में करेंगे। राइट, आइए हम थोड़ी सी जो 2-3 जो सामान्य न्यूज हैं उनको देख लेते हैं। मित्रों, मैं केवल 2 न्यूज की चर्चा करूंगा, और सच पूछे तो कहीं ना कहीं दोनों न्यूज एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। आपने दूरदर्शन में भी देखा होगा, उसमें थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ था, आकाशवाणी न्यूज में भी आपने सुना होगा भारत और स्विट्जरलैंड के बारे में। भारत और स्विट्जरलैंड ने एक संधि की है जो महत्वपूर्ण है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, जिसमें एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि जो मनी ट्रांजेक्शन है, मतलब धन का जो लेन देन है, उसको पारदर्शी बनाने की बात कही गई है। देखिए, स्विट्जरलैंड में ये माना जाता है कि है ही, स्विट्जरलैंड में इस तरह का बैंक है कि वहां कोई भी व्यक्ति अपना पैसा रख सकता है, वहां वो पूछा नहीं जाता कि आपके पास ये पैसा कहां से आया है। राइट, वो पैसा आपका रखा रहता है, और वहां की पॉलिसी ये है कि उस पैसे के बारे में अगर वहां की सरकार जानना, वहां की मतलब जहां के नागरिक ने पैसा जमा किया है, जैसे मान लीजिए कि भारत के किसी नागरिक ने स्विस बैंक में पैसा जमा कर दिया, राइट, और भारत सरकार को पता लग गया कहीं से कि भाई इसने स्विस बैंक में पैसा जमा किया है। अब यही तरीका है कि हम बैंक से पूछें कि भाई बताइए ये किसका पैसा है और कितना पैसा है, तभी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं। तो वहां के कानून के अनुसार वो बताने के लिए मजबूर नहीं है, वो नहीं बताएंगे, मजबूर क्या, वो बताएंगे ही नहीं, इसीलिए लोग फिर ऐसे बैंकों में पैसा भी रखते हैं। अब जो पारदर्शिता की बात भारत सरकार ने कही है, तो अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में ये हवा चल रही है। याद रखिए दोस्तों कि ये केवल भारत में ही नहीं है, लगभग भारत बहुत दुनिया के बहुत से देशों में, काफी देशों में, लगभग तो नहीं कहना चाहिए कि सभी देशों में, लेकिन काफी देशों में अब जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं उनको लेकर के एक चेतना आई है कि कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जाए, क्योंकि ये लगातार फैलता चला जा रहा है ना, कैंसर की बीमारी की तरफ फैलता चला जा रहा है। तो दूसरे देश भी अब ओपन हो रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड से अभी जो संधि हुई है, इसमें अब एक संभावना बनी है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शन के बारे में जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान हो सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सफलता है, और आपने देखा कि इससे पहले भी कुछ देशों के साथ भारत की इस तरह की संधियां हुई है। इसके बाद जो इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी खबर है, और ये अंतिम खबर ही है न्यूज की कह लीजिए दोस्तों, वो ऑपरेशन क्लीन मनी को लेकर है। आपने ये न्यूज में ये शब्द सुना होगा, ऑपरेशन क्लीन मनी, और उसमें ये कहा गया है कि ऐसे कुछ खाते पता लगे हैं, सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, लगभग 16,000 खाते या कुछ ऐसे आंकड़े बताए गए हैं, जिनके खाते में मतलब डीमोनिटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई, और ये देखा जा रहा है कि उन्होंने जो पैसा अपने खाते में जमा किया है वो उनका जो टैक्स का जो लेन देन है, टैक्स के लिए जो वो फार्म भरते हैं उससे वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अचानक इनके पास 1 करोड़ रुपए कहां से आ गया, संपत्ति कह लीजिए कि एक संपत्ति है, वो खाते के ही पैसा नहीं, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अपनी दिखा रहे हैं, तो उसको उन्होंने क्लीन मनी का एक फेज कहा, एक चरण। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन क्लीन मनी है, मुझे लगता है कि ये शब्द ऐसा है जो आपको अलग से मालूम होना चाहिए, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले चर्चा नहीं की है कभी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ऑपरेशन क्लीन मनी है, ये जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसने जनवरी 2017 में लॉन्च किया था, और हिंदी में जो इसका नाम रखा गया है वो ज्यादा अच्छा है, स्वच्छ धन अभियान। क्लीन को यहां स्वच्छ शब्द रखा गया है, मतलब सफेद धन नहीं रखा गया है, वैध धन भी नहीं रखा गया है, स्वच्छ धन बड़ा प्यारा शब्द है। देखते हैं ये स्वच्छता अभियान सभी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, स्वच्छ धन अभियान। तो इसके पहले चरण में क्या हुआ, पहले चरण में यह हुआ कि ई वेरिफिकेशन कराया जाएगा, नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने पैसा अकाउंट में जमा किया है उनका ई वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और ऐसे लगभग 18 लाख लोगों की पहचान की जाएगी, ये पहले चरण में किया गया। सेकेंड चरण में यह किया गया दोस्तों कि उनके खातों को देख करके 60,000 लोगों को छांटा गया है और अब इनसे डिटेल्ड जानकारी मांगी गई है उनके पैसों की, उनकी संपत्ति के बारे में। और अभी जो एक फेज है आपने सुना उसमें 16,000 लोगों को लगभग चुना गया है जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक दिखाई गई है। देखिए संपत्ति आप 100 करोड़ से अधिक भी दिखा सकते हैं, सरकार को तो केवल इससे मतलब है ना कि वैध है या अवैध है। इनकम टैक्स हम हर साल भरते हैं आप जानते हैं, अगर उस इनकम टैक्स के साथ मैच कर रहा है तो 100 करोड़ की आप 100 अरब की संपत्ति दिखाइए, आपको कोई कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स का फॉर्म भर ही नहीं रहा हूं, इनकम टैक्स दे ही नहीं रहा हूं, और अगर दे भी रहा हूं तो शुरू में तो मैंने बहुत कम दिया है और अब मैं संपत्ति बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि फिर अचानक कहां से कोई छप्पर फट गया या कोई आपको खोदने में हंडा निकल गया, धन का कहां से आया है ना। तो अब सरकार उनसे जानकारी मांगेगी, अगर आप संतोषजनक उत्तर दे देते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर सरकार उस पर अपने ढंग से कार्यवाही करेगी। तो मित्रों यह है स्वच्छ धन अभियान, राइट। अब मैं थोड़ा सा मूल विषय पर आता हूं दोस्तों। मूल विषय यह है ओबीसी को लेकर के, और कुछ बातें हम लोगों ने कल की थी, आपको याद होगा कि सरकार ने अभी ओबीसी के बारे में 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी तरह से आपको नोट्स भी बनाते जाने हैं ना, क्योंकि चीजें धीरे 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 डेवलप होती चली जाती हैं, आपके पास अपना एक नोट्स तैयार हो जाता है और इसके बाद फिर जब मैगजीन आती है महीने भर की तो उसी पर आप देखेंगे कि आपको एक कलेक्टेड आर्टिकल मिल जाएगा, सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। तब जब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो एकदम पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी, आपको ऐसा महसूस होगा। 3 महत्वपूर्ण बातें कही, एक उन्होंने जो क्रीमी लेयर था वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने एक आयोग बनाया है जो ओबीसी में उप श्रेणियों की पहचान करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। और तीसरी कल हमने खबर देखी थी कि पीएसयू और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पदों को आइडेंटिफाई करके उनको क्रीमी लेयर का मान करके ओबीसी के रिजर्वेशन से अलग कर दिया जाएगा। ये बात हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े। अब मित्रों अब एक बहस चल पड़ी है और एक बहुत अच्छी बात है। बहस किस बात को लेकर के है? बहस इस बात को लेकर के है कि जो चीज, जो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो ओबीसी के लिए लागू किया जा रहा है तो इसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। देखिए हमारे संविधान को लागू किए हुए अब लगभग 65 साल से ऊपर हो चुके, 70 साल होने जा रहे हैं, और तब से हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ जिन लोगों को सोचिए कि उस समय रिजर्वेशन मिला होगा वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अब वो ऑलरेडी अगर वहां क्रीमी लेयर होता तो वो ऊपर आ चुके हैं और वो उससे बाहर हो जाते और उनसे जो जगह खाली होती वो उन वास्तविक लोगों को मिल पाता जो इसके अधिकारी हैं। क्योंकि याद रखिए कि जो आरक्षण की जो अवधारणा है, नो डाउट बेस इसका जाति है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ये जाति के आधार पर हो रहा है, आर्थिक आधार पर नहीं हो रहा है। तो इसका एक उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना उद्देश्य तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इसका एक उद्देश्य जिसकी जनरली हमें अनदेखी नहीं की जानी चाहिए वह है सामाजिक न्याय, कि कैसे हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि भाई जिनको फायदा दिया जा चुका है उन्हें फायदे के दायरे से बाहर किया जाए ताकि दूसरों को फायदा मिल सके। तो एक सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि जो नियम कानून रिजर्वेशन के मामले में ही ओबीसी पर लागू किया जा रहा है उसी को लागू करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। अब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब आप देखिए कि दूसरे वर्गों से डिमांड क्रिएट होने लगी है। मराठा आंदोलन हुए रिजर्वेशन को लेकर के, जाट के आंदोलन हुए रिजर्वेशन को लेकर के, पटेल ने आंदोलन किए रिजर्वेशन को लेकर के, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको ये दिखा लग रहा है कि अब इसके पीछे लॉजिक नहीं रह गया है। लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है जिस समय लागू किया गया था उस समय जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी और एक पर्टिकुलर कुछ जातियां ऐसी थीं जिनको सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा और वो पीछे रह गई, विकास के दौर में वो बहुत पीछे हो गई, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जरूरी है कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली इतने सालों में हमने कुछ उपलब्धियां भी तो हासिल की हैं, तो हम अपनी उन उपलब्धियों का मूल्यांकन करके अब दूसरों को जिनको इसकी जरूरत है इस दायरे में लेकर के आए, तब हम कहीं जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है उसको पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज तो क्या है कि फिर ये लगातार चलता रहेगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए मित्रों, इसके लिए जो सामान्य तौर पर जो तर्क दिया जाता है वो तर्क ये दिया जाता है कि सीधी सी बात है, वोट की राजनीति। जो भी सरकार सत्ता में होगी उसको डर लगता है कि यदि उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो कहीं ऐसा न हो कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो नेतृत्व वर्ग है वो उनके विरोध में हो जाए और फिर पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वो दूसरी तरफ चला जाए। एक बात और देखिए, अब ये जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, अब इनफैक्ट सच पूछे तो वो एक प्रकार से ना सरकारी नौकरी पाने का जरिया बन गया है। उसमें से दूसरी जो बड़ी चीजें थी कि वो मेन स्ट्रीम में आए, उनका सांस्कृतिक विकास हो, ठीक है, आर्थिक विकास होने पर या सरकारी नौकरी में आ जाने पर वो चीजें अपने आप होने भी लगती हैं, लेकिन वो चीज बिल्कुल पिछड़ गई है। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार कम होती जा रही, प्राइवेट सेक्टर में लगातार नौकरियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए एक उपाय के रूप में यह बात कही जाती है कि भैया अब आरक्षण वाले मुद्दे को थोड़ा सा पीछे करके, बल्कि ज्यादा जरूरी है कि सरकार नौकरियां मत कह लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर क्रिएट करे। जब ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे तो बट नेचुरल है कि फिर सरकारी आरक्षण के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, लोगों को नौकरी मिलने लगेगी, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होने लगेगी। तो उपाय के रूप में एक यह बात भी कही जाती है। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ प्रेस क्लिपिंग्स के मैं आपको नाम बताता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने मेल लिख करके ये सूचित किया है मुझे, और मुझे ठीक भी लगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण प्रेस क्लिपिंग्स हैं सर, उनको आप उसके बारे में थोड़ा आप बता दिया कीजिए। असल में मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि जिससे मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूं, हो सकता है उसके बारे में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो तो आप उसे पढ़ने को मजबूर हो जाएं तो आपके लिए दोहरा हो जाएगा। बहुत से हैं जिन्हें मैं महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे बिल्कुल ही छोड़ दें जबकि वो आपके लिए जरूरी था। क्योंकि जो मुझे सुन रहे हैं, जो इन क्लिपिंग्स को पढ़ेंगे, तो मेरे दिमाग में तो एक सामान्य सी अवधारणा है ना, व्यक्तिगत अवधारणा तो नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए मैं कभी कभी बीच में ऐसा कर भी लिया करूंगा। मित्रों, एक हिंदू की क्लिपिंग है, खासकर फ्लड प्रोन एरिया को लेकर के, कि जहां बाढ़ बार बार आते हैं वहां क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसमें इन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात कही है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे आप लोग देखिएगा और इसे हम हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने बात की थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर जो गुजरात में दंगे हुए थे, वहां क्षतिपूर्ति के लिए जो नियम जो बताए, आदेश दिए राज्य सरकार को, उसको लेकर के भी एक आर्टिकल है। ये भी फैजन मुस्तफा जी का है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने टीवी पर, दूरदर्शन पर भी इनको सुना है, लॉ कॉलेज में के वाइस चांसलर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा, ये भी मैं कोशिश होगी कि आपको हिंदी में उपलब्ध करा सकूं। दोस्तों, इसके बाद उपग्रहों की निगरानी, उपग्रहों से निगरानी को लेकर, सीमाओं की निगरानी उपग्रहों से किए जाने को लेकर के दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट है, ये आप जरूर पढ़िएगा। और दैनिक जागरण में दलित राजनीति पर एक अच्छा आर्टिकल आया है, तो यह भी आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर जनरली सिविल सर्विस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं फ्रेंड्स। पवन दीवान, निशांत निशु भोपाल से, सचिन अड़गांवकर अकोला महाराष्ट्र से, प्रशांत कुमार, प्रवीण सिंह, शिवानी मधेसिया, योगेश पाठक उत्तर प्रदेश से, जसविंदर चौहान लखनऊ उत्तर प्रदेश से, राणा रोनू सिंह, अब्दुल माजिद रियाज तांबे महाड़ महाराष्ट्र से, और सत्य प्रकाश आर्य ग्रेटर नोएडा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। दो दिन का विश्राम है आप सबके लिए, मेरी सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये दो दिन आप सबके बड़े खुशनुमा तरीके से बीतें, और दो दिनों के बाद मित्रों फिर मुलाकात होगी, फिर और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।